نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبق نمبر 57 آيت نمبر 29 سے 35 سورة نساء لیسن نمبر 57 آيت نمبر 29 to 35 سورة نساء اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ پانچویں پارے کا پہلا سبق ہے کیونکہ پچھلا لیسن جو تھا وہ ہم نے دونوں پاروں کا مکس کیا تھا تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو باضابطہ طور پہ ہم پانچویں پارے کو یہاں سے آغاز کرتے ہیں آیتوں پہ چلنے سے پہلے تھوڑا سا آج کے سبق کا خلاصہ ہمارا آج کا سبق جو ہے بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کو ایک انسان دوسروں کی زبان سے جب سنتا یا ان کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی ایک رائے بن جاتی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر اس کی بہت ساری باتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں پہلا ٹاپک جو آج ہمارے سبق میں آئے گا وہ دوسروں کے مال کو ناحق کھانے سے روکا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ دوسروں کا مال ناحق کھانے کے کون سے طریقے ہیں بس تو بہت ہی عام فہم ہے جو ہم شروع سے بچپن سے کہتے سنتے آئے لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں آتی انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق میں ہم اس کو دیکھیں گے اس کے بعد اگلی چیز کبائر کبیرہ گناہ یعنی میجر سنس کون سے ہیں اور ان سے انسان کیوں بچے پھر اگلی چیز جو بہت ہی خوبصورت چیز ہے جہاں سے بنیادی طور پہ عورتوں اور مردوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی بانٹ پہ راضی رہو وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ نہ تم اس کی تمنا کرو جو اللہ نے فضل کیا بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ یعنی دوسروں کی چیز کو دیکھنے کی بجائے اپنی چیز کو بہتر کر لو یا اس پہ راضی ہو جاؤ اور اس کے بعد پھر عورتوں اور مردوں کے حقوق کی بات ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد اگر کہیں دل کے کسی کونے میں بھی یہ چھپا ہوا ہے نا کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق کم دیے اور مردوں کو زیادہ دیے یا کوئی اس قسم کا کوئی کیڑا اگر دماغ میں تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ نکال دے آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 29 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپ کو اور مجھے پکارا گیا ایمان کا تقاضا ہے کیا لا تاکلوا نہ کھاؤ جب بھی کوئی آیت آمنو سے شروع ہوئی یا ایھا الذین آمنوا کی طرح تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق کہ ایمان والو غور سے سنو تمہارے رب نے تم کو آسمان سے پکارا ہے غور سے کیوں سنو کیونکہ اس کے بعد یا تو کوئی حکم ہوگا یا کسی چیز سے روکے جاؤ گے تو اس آیت میں حکم نہیں ہے بلکہ نہیں ہے نہ کرو ڈونٹ ڈو دس یعنی آپ کہہ لیجئے کہ فرام ڈونٹس آف دی قرآن کیا نہ کرو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال یا ایک انسان کسی دوسرے انسان کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے نہ کھائے ناحق طریقے سے کھانے سے کیا مراد ہے کہ جس پر اس کا حق نہ ہو سمپل سا ترجمہ ہے اس کا حق کے ساتھ کھاؤ انسان کا حق کس چیز پہ ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کی کمائی کا مال اس پہ حق ہے آپ کا ایک مرد یا عورت جو بھی خود کماتا ہے اگر جائز حلال طریقے سے کھا سکتا ہے دوسرے انسان کا حق کس چیز پہ ہوتا ہے جو کوئی دوسرا اس کو ہبہ کر دے تحفے میں دے دے یہ آپ کی ہو گئی وہ بھی مال حق ہے پھر مال حق کی ایک اور قسم کیا ہوتی ہے کہ چیز کسی دوسرے کی ہے لیکن وہ دل کی خوشی سے آپ کو پیش کرتا ہے مثال ہے کہ میرے پاس چائے کا کپ ہے اب میں چاہوں تو خود پیوں چاہے آپ میں سے کسی سے کہوں کہ آپ لے لیں جب میں نے دل کی خوشی سے آپ کو پیش کیا تو آپ کے لیے بالکل جائز ہے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اس میں پھر تحفہ تحائف اور باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اسی طرح مال حق میں وہ مال بھی ہے जिसको पाने के दौरान अलहक को नाराज ना किया जाए। माल कमाने के, हासिल करने के वो तमाम तरीके जिनसे अल्लाह ताला ने रोका है वो माल ना हक है। उसकी लंबी लिस्ट है जो मेरे और आपके लिए बिल्कुल भी नई नहीं है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। चोरी का माल हराम, रिश्वत हराम, इसी तरह से हम बचपन से ये बातें जानते हैं कि कोई किसी से माल लूट लेता है तो हराम, धोखे से, फ्रॉड से, किसी भी किस्म की चालबाजी से। अल्लाह के नबी ने कहा जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं, मिलावट से कोई माल हासिल कर ले वो माल ना हक है। वो माल जिसके अंदर सूद की कोई आमेजिश हल्की सी भी आ गई, शराब की खरीदो फरोख्त, ये सारे माले हराम में से आएंगे। इसके ऊपर कुरान पाक में बहुत जगह बात होती है कि इंसान जब किसी चीज़ में अल्लाह की नाफरमानी शामिल कर लेता है तो उसमें असल चीज़ की बरकत भी चली जाती है। इसमें जुआ भी आएगा, गैम्बलिंग है, इसी तरह वो तमाम चीज़ें जिससे दुनिया में बातिल फैले। ये चौथी तारीफ लिख लें। माले हक कौन सा है कि जिसके कमाने की वजह से दुनिया में ना हक ना फैले। मसलन आप देखिए, इसमें हर वो चीज़ आएगी जिससे नस्लें ख़राब होती हैं। मसलन ऐसी चीज़ें बेचना फिल्में ड्रामे जिनसे लोगों का किरदार ख़राब हो, नज़रों की गंदगी। आप टीवी बेचते हैं ठीक है, लेकिन अगर वो टीवी जो है वो ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि जिससे हराम हलाल की हदें टूटती हैं, फोहश, गाने, म्यूज़िक, फिल्में, ऐसी तमाम चीज़ें जिससे किसी सोसाइटी में ना हक फैले या बातिल फैले, इन सब को भी नहीं लेना। अब अगर आप इन सारी चीज़ों पे गौर करके देखें तो माले हक में जो मेरा अपना है वो तो मेरा है। अल्लाह ताला कहता है खाओ भी और खिलाओ भी, खुद ना रखो बल्कि दूसरों को भी दो। दूसरी सूरत यह है कि दूसरों का माल, थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूँगी क्योंकि बाज़ दफ़ा हम इन बड़ी बड़ी चीज़ों को सुनकर सूद जुआ शराब में छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। मसलन आप देखिए कि किसी का वो माल या वो कोई चीज़ जो सिर्फ मुरव्वतन कोई आपको खिलाए, कुछ दूसरी चीज़ रस्मन, क्या करें वक्त का रिवाज है। तीसरी वो सूरत जिसमें इंसान पीयर प्रेशर की वजह से वो दावत खिला रहा है, ये भी माले हक नहीं है। तीब नफ्स के साथ कोई खिलाए तो खाएं। बस आप देखिए कि आज हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा मरने और जीने और शादी और ब्याह पर कुछ ऐसी रस्में बन गई कि जिसको मारे बांधे गरीब लोगों को करना पड़ता है। एक औरत है, उसका शौहर फौत हुआ और बच्चे भी छोटे हैं। अब एक दो तीन दिन तक बात चलती रही, अब क्या हुआ कि तीसरा दिन है, खाना पकाओ, देगे पकती हैं, मीठे चावल पकते हैं। मुझे कभी समझ नहीं आती कि लोग तीजे पे मीठे चावल क्यों पकाते हैं। कहते नहीं, ये बूढ़ा होके मरा है तो अब इसकी बहू बेटियों को जोड़े भी दो, ये माले ना हक है। एक वाक्य मैं अक्सर ही सुना देती हूँ इस मौसम पे जब भी बात होती है कि एक औरत थी, फैसलाबाद के करीब कहीं रहती थी, तो उसने शेयर किया था एक बार ये बात किसी से कि जब उसका शौहर फौत हुआ, छोटे छोटे बच्चे थे और दिहाड़ीदार जैसे लोग होते हैं, डे टू डे लाइफ लाइवलीहुड कमाने वाले वही था। कहती कि जो हाथ में जो चीज़ें थी वो तो ख़त्म हो गई, दूसरा तीसरा दिन भी हो गया, अब चहलम की तैयारियां थी। तो पुरजोर ख़ानदान की तरफ से कह लीजिए कि खामोश किस्म का प्रेशर होता है कि चहलम का खाना पके। तो ये कहती कि मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कोई प्लॉट था जो मियाँ ने कभी अपनी ज़िंदगी में लिया होगा। कहती मेरे पास वही था। मौलवी साहब के पास गई, अल्लाह जाने वो मौलवी साहब बेचारे किस स्कूल के पढ़े हुए थे। उन्होंने अपनी सिचुएशन बताई कि मेरे पास कुछ नहीं सिवाय इस प्लॉट के, तो क्या फिर भी मुझे चहलम का खाना खिलाना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर बख्शा जाए तो खिलाना ही पड़ेगा। और उन्होंने वो बेच के तो चहलम का खाना खिलाया। ला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, ये बातिल हो जाएगा। आप देखिए कि आज हमारे मुल्कों में लोग पिस जाते हैं। कुछ लोग तो वो है ना कि जो कर सकते हैं अफोर्ड, वो कहते हैं जी हम और किस लिए कमाते हैं, और सच्ची बात है उनकी ज़िंदगी का मरकज़ और महवर ही अपने बच्चे हैं, तो वो तो कहते हैं जी बच्चों की शादियों के लिए तो कमाते हैं, अब शादी पे ना लगाए तो कहाँ खिलाना है। वो तो एक शादी को 8 दिन की बना के तो एक दिन शादी ब्याह मंगनी उपटन और न जाने माइयाँ क्या क्या करके खिला देंगे। लेकिन जो गरीब बेचारे बीच के फंसे हुए लोग जो इधर और उधर से न फंसे हुए, वो क्या करें? तो कभी भी किसी की कोई चीज़ अगर आप इस सोच से खाते हैं तो पहले अगले से पूछ तो ले कि तुम चाहते हो ऐसा करो। बस दावतें हमारे यहाँ मजबूरी के नाम पे पकती हैं, क्योंकि सारे ख़ानदान वाले ये दावत पका रहे हैं तो हमें भी पकानी पड़ेगी, वरना लोग कहेंगे ये कैसी बहन है, इनको तो खुशी नहीं हुई। तो खुशी खुशी खाएं, किसी का माल खाएं और कैसे खाएं, इसका तरीका जो है सूरत नूर में हम पढ़ेंगे। अकेले भी खाओ, सामने भी खाओ, बैठ के भी खाओ, लेकिन आप यहाँ से दीन इस्लाम का हुसन देखिए कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे हमें गाइड करता है। अरबों में बिल्कुल कोई कानून नहीं था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला तसव्वुर था। अल्लाह ने पिछले सबक में हमने पढ़ा कि कैसे जंग में हासिल की हुई औरतों और मर्दों के हकूक मुकर्रर कर दिए, तो कहाँ फिर ये कुछ नहीं होगा। अब एक बात है सिर्फ, कि क्या सिर्फ खाने की बात है? ला ताकुलुम वालकुम अकल या किलो है, ला तशरीबु क्यों नहीं कहा? बात समझ है? यानी किसी की कमाई खराब है या किसी के कमाई में कोई नाहक है, तो क्या सिर्फ खा नहीं सकते बाकी पी सकते हैं, या फिर हम कुछ और भी उसकी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उलमा किराम कहते हैं कि जब कोई चीज़ इंसान खाता है ना, तो वो जिस्म का हिस्सा बनती है और उसका असर जिस्म में खून की सूरत में जर्रे जर्रे पे पहुंच जाता है। तो गोया के ला ताकुलु कह के हर चीज़ से रोक दिया गया। बहरहाल इसमें बहुत सारी बातें हैं, वो इंशाल्लाह अपने मौजू में और भी डिटेल से हम आगे करेंगे। एक छोटी सी बात करके आगे चले जाते हैं, और वो क्या कि अगर कोई मजबूर कर दिया जाए, मिसाल है कि कोई बीवी है, शौहर की कमाई ऐसी है या सो ऑन, जो भी आप डिटेल्स हैं। वैसे तो हम सूद के मौजू में थोड़ी बहुत बात कर भी चुके, तो आप देखिए कि फत्तकुल्लाह मस्तता, तुम अल्लाह से उतना डरो जितना तुम डर सकते हो, और इस हद तक कि सिर्फ कूते ला यमूत, इतना खाना कि जिससे इंसान मौत से बच सके। फिर उसमें दावतें, पार्टियां और खुशी, और फिर कहना क्या करें मियाँ, ये काम छोड़ते नहीं है। मैं पूरे यकीन और शऊर से आपको कह सकती हूँ कि जब किसी को इसका यकीन हो जाएगा ना कि आप इस वजह से उसका माल नहीं खा रहे कि उसमें कोई आमेजिश है, यकीन करें सालों के सफर को महीनों में बदल देगी ये चीज़। ये टॉर्चर बहुत बड़ा होता है किसी मर्द के ऊपर कि मेरी कमाई कोई खा नहीं रहा, बीवी जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, बच्चे जिनके लिए कर रहा हूँ, वो मेरी इस कमाई से खुश नहीं। वो कहेंगे मेरी बला से, मुझे नहीं चाहिए 10,000, मैं तुम्हें 2,000 कमा के देता हूँ, हलाल से देता हूँ। तो ये जो पीयर प्रेशर होता है ना, ये इंसान को मार के रख देता है। किसी को आप देखें कि उसका अपेरेंटली, वो खुद बताए ना, तो मुझे और आपको किसी भी चीज़ के ऊपर लोगों की टो लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा कि मोमिन जो है वो दूसरों के जाहिर पे क्यास करता है। कोई कहता है आई लव यू तो कहते हैं हाँ आई लव यू, अपनी अंदर से नहीं करती। कोई कहता है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, और इसलिए कहना भी वही चाहिए, आपको अच्छी लगी चीज़ आप कहते बहुत अच्छी है, झूठ नहीं बोलना होता। तब कोई आपको कुछ नहीं कहता तो आप भी उसको कुछ ना कहें, लेकिन जब पता चल जाता है कि किसी की कोई चीज़ ऐसी है और वो आपके सामने जाहिर पे इसको दिख रहा है ये मामला, तो आप ना सिर्फ ये कि खुद उससे बचें बल्कि दूसरे को भी बचाएं। अब इस सारी चीज़ों के बीच में कि जिसमें बातिल तरीके से ना खाओ, इल्ला मगर अन तकूना, ये के हो तिजारतन, वो तिजारत अन तरा दिम मिनकुम, बाहमी रजामंदी से, यानी जो काम कर रहे हैं आपस में मिलकर उन दोनों की लेन और देन हो, किसी को कोई चीज़ ले रहा है कोई दे रहा है, आपस में तबादला हो रहा है, किसी ने चीज़ दी उसके पैसे आगे, अगर कोई ऐसी सूरत हो जाए तो फिर जायज़ है। अब यहाँ पे रुक जाते हैं, वक्फ का लफ्ज़ भी बता रहा है, ये है इस्तिस्नाई सूरत के हर वो चीज़ जिसमें किसी का हक मारा जाता है उसकी तो इजाज़त नहीं है, लेकिन जब कोई बंदा दूसरे के साथ मिलके कमाता है, मिसाल है कि आप देखिए कारोबार होता है, हम जाते हैं चीज़ खरीद लेते हैं और पैसे देते हैं चीज़ लेके आ जाते हैं, तरादम बहीना, ठीक है नो प्रॉब्लम, आपको महंगी लगती है आप ना लें। इसी तरह किसी की किसी कारोबार के साथ जब बात हो जाती है, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि किसी के साथ तिजारत करना और फेयर बेसिस पे करना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। हदीस में आता है कि सादिक ताजिर, सच्चा ताजिर जो है कियामत के दिन अंबिया कराम और शुहदा के साथ होगा। यहाँ से आप देखिए कि तिजारत कितनी प्यारी चीज़ है। हर नबी ताजिर था, नौकरी करना मुलाजमत करना एक इस्तिस्नाई सूरत है, गलत नहीं है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सिर्फ नौकरी के छूटने का डर रखते हुए उनकी गलत बात को भी मान जाते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। फिर इसी तरह आप देखिए कि तिजारत और लेन देन की बुनियाद के भी बहुत सारे असूल हैं, अल्लाह करे कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो आप हदीस से बाब मदारत पढ़ें, बाब व्यू है तिजारत, यकीन करें इतनी बारीकी है। मैं आपको एक रिकमेंड करूंगी, तहसीरुल कुरान एक तफसीर है, एक तो आसनुल बयान है ना जो आपको रमज़ान में भी अक्सर आपके हाथों में होता है, एक जिल्द का कुरान है, एक 4 जिल्दों की तफसीर है तहसीरुल कुरान, अगर आप में से कोई भी पाकिस्तान जाता तो अपने लिए मंगवा लें, इधर चाहिए इधर बता दें आपके लिए मंगवाते हैं। उसमें उन्होंने फी जमाना बातिल क्या क्या चीज़ें, प्राइस बॉन्ड और लाइक इंश्योरेंस का काम, उसकी आज के दौर की बहुत ज़्यादा डिस्कशन की हुई है, जो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, और जो सवालात जहनों में उठते हैं अमूमन उससे फायदा हो जाता है। ठीक है, अब इसी तरह मिसाल है कि बाहमी रजामंदी, आप जूता खरीदने गए, दुकानदार ने कहा कि ये 500 रुपए का जूता है, आप उसको कहते हैं ठीक है इतना ठीक है, नहीं 450 का कुछ है, ये जो हम बारगेनिंग करते हैं ना हमारे कल्चर में, आपको तो इसकी इजाजत नहीं है, बिल्कुल इजाजत नहीं है। लेकिन आप जरा देखें कि कारोबारों में जिन लोगों का वास्ता पड़ा है, वो 1,000 की चीज बता के 200 रुपए की दे देते, वजह क्या कि उनको भी पता है कि इन्होंने बोलना है कम करना। और इन मुल्कों में जहां आप रहते हैं कभी एक पैनी भी कम करवाई, क्यों कराई नहीं, क्योंकि हमें पता ये करेंगे नहीं। वो लिख दें कि इस पे 50% डिस्काउंट है या 10% है, वो उनकी मर्जी है, हम चेंज नहीं करते, और ये सरासर फेयर है। तो किसी को इतना मजबूर कर देना कि वो फिर मजबूर हो के आपको दे दे, फिर वो कहते हैं जी बाजी आपके लिए इतने की है, जी आप कहती हैं तो दूसरे के लिए नहीं। वही चीज एक को 100 की बेच रहे होते हैं, दूसरे को 500 की बेच रहे होते हैं, कोई गोरा आ जाए उनके सामने तो 1,000 की भी बेच जाएंगे कि भाई इन्होंने कौन सा पूछना है। तो जायज मुनाफा रखते हुए ये ठीक है, आप उसमें कुछ प्रॉफिट ले सकते हैं जो भी है, लेकिन इसको बहुत सीधा रखना चाहिए। आप जरा नोट कीजिए कि अगला हुक्म के वला तक तुलू अनफुसकुम, और अपने आप को कत्ल ना करो। ऐसे नहीं लग रहा कि बिल्कुल ही दो मुख्तलिफ चीजें हैं, एक तरफ पीछे हम कुछ और पढ़ रहे थे, यहाँ एकदम आले बातिल और हक की बात हो गई और कत्ल की बात हो गई, तो अब यहाँ अपने आप को कत्ल ना करो। इसकी मुफसरीन ने फिर एक से ज्यादा तफसीरें बयान की हैं, कहते हैं कि अगर आयत का पिछला हिस्सा देखें, जो कि हम देख रहे हैं कि जिसमें बाहमी रजामंदी के साथ खाओ, तो वो कहते हैं कि दूसरे का माल नाहक खाना खुद को हलाक करना, और हलाकत है ना, एक मुसलमान जब दूसरे का माल खाएगा तो क्या होगा, इससे दुनिया में पूरा सोशल सेटअप जो है वो बिगड़ जाता है, इंसानों का बुरे नतायज भी होते हैं, इसी से हराम तरीके आम हो जाते हैं और आखिरत की सजा तो बनी जाती है। ठीक है, लेकिन दूसरा अगर इसका मानी लें, क्योंकि इस सूरत में आप देखेंगे कि इंसान को बहुत सारी इखलाकी चीजें सिखाई जाई है, तो यहाँ इससे मुराद फिर खुदकुशी करना है, खुद को ना हलाक करो, सुसाइड इस्लाम में अलाउड नहीं है। ये आपके पास आयत आ गई है, इसका आप नंबर नोट कर सकते हैं कि तुम खुदकुशी से बचो। तीसरा इसका मानी ये कि दूसरे को कत्ल ना करो, ये मौजू आगे भी आता है और पहले भी आता है। अगर आप यहाँ खुदकुशी को देख लें तो खुदकुशी से क्या मुराद है, सुसाइड करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने खुद को कत्ल किया, अल्लाह सुबहाना ताला उसको क्यामत तक वही हथियार देगा जिससे उसने खुद को मारा, और वो रोज खुद को मारता रहेगा, और मौत की वो तकलीफ जो किसी को एक दफा भी आ जाए तो कहते हैं कि उसका जायका 500 साल तक नहीं भूलता, वो हर वक्त वो मौत के जायके को चखता रहेगा। खुदकुशी इस्लाम में हराम है। ये है खूबसूरत दीन हमारा, और इस्लाम देखिए किसी की जान और उसके माल का एहतराम सिखाता है। ये एक आयत इन दोनों चीजों की दलील है कि किसी सोसाइटी में अमन चाहते हैं आप, वहां की सोशियोलॉजी को अच्छा करना चाहते हैं, तो लोगों की जानें भी महफूज हों और उनके माल भी महफूज हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबे में क्या कहा कि लोगों, तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर हराम है, जैसे ये शहर, ये जगह, ये महीना हराम है। यानी हम कितना रोते हैं हज के दिन को, हाय बैतुल्ला, हाय हज करे, हाय जुम्मे का दिन हो, हाय अरफे का दिन है, हज के रिचुअल जब चल रहे होते हैं तो हम इधर भी रह के उधर ही गए होते हैं, इसी तरह होता है ना। लेकिन आप देखिए कि उनकी इतनी हुरमत है, और दूसरे की जान लेनी, जान ना ले इज्जत लेते हैं कि नहीं लेते, गिबतें जब दूसरों की करते हैं तो क्या इज्जत लेते हैं उनकी कि नहीं लेते, जब हम दूसरों को ताने देते हैं, इल्जाम लगाते हैं तो इज्जत होती है। और माल के साथ आप देख लीजिए, सगे भाई बहन एक दूसरे पे जुल्म करते हैं। अक्सर मैं सोचती हूँ कि अगर हम इस्लाम की इन नसीहतों पे अमल करते तो वो जो दुनिया है ना, जिसको वल्लाहु यदुकुम इला दारुस्सलाम, वो दारुस्सलाम है जन्नत, ये दुनिया दारुस्सलाम बन जाएगी। जन्नत का असल हुसन क्या आपको पता, कि वहां कोई किसी को तकलीफ नहीं देगा। दो दफा तो कुरान का लफ्ज मुझे भी याद आ रहा है, एक जगह ला तस्मऊन फीहा लागिया, तुम उसमें लख बातें नहीं सुनोगे, और एक जगह ला यस्मऊन फीहा लघवम वला किज़्ज़ाबा, ना झूठ सुनेंगे ना लख बातें सुनेंगे। ये दुनिया भी जन्नत बन जाएगी कि जहां कोई किसी को दुख ना दे, ये एक फैंटेसी वर्ल्ड की बातें नहीं है, मुस्लिम स्टेट ऐसी ही होती थी। आप दौरे फारूकी का कोई ना कोई पहलू देखते रहा करें, इतना अमन और चैन था कि लोग हाथों में माल लेके फिरते थे कि कोई हमसे हासिल कर ले। आप देखिए कि जब किसी को फिक्र हो, मिसाल है कि आप और मैं इधर बैठे हैं पढ़ने के लिए आए ना, आपको यकीन हो कि पीछे आपके घर में चोरी नहीं होगी। सोचिए जरा, जो चीज जहां छोड़ी घर में रहने वाला भी कोई नहीं देखेगा, और खुदा ना खास्ता बाहर से भी कोई ऐसा चोर आ ही नहीं सकता क्योंकि इस मुल्क में बड़ा अमन है। आप यहाँ आ गए, आपको सिक्योरिटी का एहसास होगा, बिल्कुल होगा ना। फिर आप सोचते हैं कि आप कुरान पढ़ने आए, सुनने आए, आप थोड़ा लेट भी हो सकते हैं, पॉसिबल है, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, रास्ते में ट्रैफिक भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ हो सकता है। आपको ये सुकून है कि जब मैं घर जाऊंगी तो कोई आगे से मेरे ऊपर बरस नहीं पड़ेगा, मुझे ताना नहीं देगा। तो सच बताएं कि क्या आपकी दुनिया और आपका घर जन्नत का घर नहीं बन जाएगा? तो ला दरर व ला दरार, औरों को छोड़ दें, अब आप कहेंगे बस यही तो रोना है। तो याद फिर कर लीजिए कि कुरान आप पढ़ रहे हैं, आपके घर वाले नहीं पढ़ रहे। आपके घर में अगर सास हैं, हो सकता है बेचारी बीमार हो, उनका मिजाज कड़वा हो सकता है, वो हो सकता है कि बड़ी शिद्दत से आपका इंतजार कर रही हो और 10 मिनट भी उनको भूचल पड़े, हो सकता है कि आपके शौहर उस वक्त घर में हो, कुछ भी हो सकता है। आप अपना मिजाज ऐसा रखिए कि उनको आपसे कोई तकलीफ ना हो, और थोड़ी बहुत चीजें अगर जिंदगी में आ जाएं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, उसको बहुत बिग इशू नहीं बना लेना चाहिए। फिर फरमाए इन्नल्लाह का नबिकुम रहीमा, बेशक तुम्हारा रब तुम पर बहुत रहीम है, यानी अल्लाह ताला बंदे के ऊपर बड़ा रहम फरमाने वाला है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ही इज योर वेल विशर, ही इज योर सिंसियर, वो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। इसकी मेहरबानी है कि तुम्हें ऐसे कामों से रोक रहे जिसको करने से तुम बर्बाद हो जाओगे। अब आप देखिए कि बस दफ़ ऐसे होता है कि इंसान को बुरी लगती हैं पाबंदियाँ, क्या मुसीबत है, क्यों बताया मुझे, क्यों ऐसा किया, दिस एंड दैट। तो आप बताइए कि अगर कुरान हम ना पढ़ते और हमें ये चीज़ें ना पता चलती, नबी सल्लम के जरिए से ना पता चलती, तो कल क़यामत के दिन अचानक पकड़ हो जाती। इसको आप छोड़िए, ऐसे समझिए कि जैसे आप इंग्लैंड आए, आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता, ना आपने पूछना चाहे, और आप सीट बेल्ट बांधे बगैर रोड पे चले गए, और किसी जगह कंट्रोल हो गया, और आपको हो सकता है 50, 60 या 100 पाउंड का घर जाना देना पड़ा, तो क्या उस वक्त आपको खुशी होगी? ना मैंने यहाँ के रूल्स पढ़े, ना मुझे पकड़ो भाई क्योंकि मैंने तो पढ़े ही नहीं है, उस वक्त अफसोस होगा। और आपकी अगर किसी दोस्त ने आपको बता दिया आते ही कि देखे यहाँ आई है तो आपको सीट बेल्ट बांधनी पड़ेगी वरना इसकी पेनल्टी है, और वाकई किसी मौके पे कंट्रोल हो जाए और आपने अपनी दोस्त के कहने पे सीट बेल्ट बांधी हुई थी, तो आपके दिल से दुआएं निकलेंगी कि नहीं? यही काम दीन वाले करते हैं। उस बुरे वक्त और बुरे अंजाम से दो चार होने से पहले लोगों को बताते हैं कि लोगों देखो तुम पे ये वक्त आने वाला है, लेकिन लोग अमूमन इन बातों को नहीं समझते, उनको पसंद नहीं आती ये बातें, इसलिए इसको मानना नहीं चाहते। इसीलिए अगली आयत में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि मैंने तो ये बात बता दी। अब आयत 30 में देखिएगा, वमई यफल जालिका, और जो कोई भी ये करेगा, क्या करेगा, ये जो बात ऊपर हुई है, ला तक्तुलु अनफुसकुम भी करेगा, या लोगों का माले ना हक खाएगा, उद्वानम व जुल्मा, जुल्म और ज्यादती के साथ, यानी दूसरों का माल या उन जान उनकी ज्यादती के साथ ले लेगा, फसौफ नुस्ली ही नारा, तो हम जल्द ही इसको आग में झोंक देंगे, वकान अज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और ये अल्लाह ताला पर बहुत आसान है। यहाँ फिर एक बात समझ लीजिए कि सारी दुनिया के लोगों को जहन्नुम में झोंक देना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। कुछ लोगों ने एक फलसफे के साथ बात पेश की, कहते हैं ये कैसे मुमकिन है कि इतने लोगों को लाग में डाल दें, बल्कि लोग तो बड़े नाम ले लेके कहते हैं। एक महफिल थी तो वहाँ कुछ सिस्टर्स थी, और मतलब उर्दू स्पीकिंग सिस्टर्स थी, तो एक सिस्टर जो माशाल्लाह काफ़ी आप कह सकते हैं कि उम्र के एतबार से 50-60 के करीब, यानी डिसेंट औरत थी, तो नाम ले रही थी, मैं अब उनकी बात दोहराऊंगी तो शायद आप मेरी तरफ ना मंसूब कर दें, बड़े मारूफ इंडियन लोग हैं, कुछ अदाकार कह लीजिए या कुछ उनके सियासतदान या जिन्होंने बड़ी दुनिया के हिसाब से खिदमत की, तो नाम ले रही थी। अरे भाई आप कहती हैं अल्लाह उसको आग में डालेगा, ना आपका ख्याल है क्या वो आग में जाएंगे, वो देखो अपने मुल्क के लिए इतना करके, क्या आप कहती हैं, आपस में कुछ कर रहे थे। तो मैं दिल में सोच रही थी कि कौन कहता है, आप और मैं क्यों कह रहे हैं, जिसका मामला जिसके बंदे हैं वो खुद कह ले, राइट। तो बस दफा लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह के लिए लोगों को आग में डालना बहुत मुश्किल है। देखिए मैं आपको इस तरह समझाऊंगी कि बस दफा हम पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, हो सकता है एक उस्ताद है, वो किसी एक स्टूडेंट को गलत काम करने पे सजा देने का इरादा करता है, फिर वो देखता है कि ये तो आधी क्लास ने ये नहीं किया, तो कहता है सबको क्या सजा दूं, छोड़ दो, चलो इन सबको छोड़ दो, हम प्रेशर में आ जाते हैं। आप अपने बच्चे को एक दफा समझाते हुए डांटना चाहते हैं, लेकिन आप जरा सा देखते हैं कि बच्चे में सरकशी आ रही है, रिबेलियस हो रहा है, या आगे से तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहा है, तो आप क्या करती हैं, अब इसको छोड़ दो, बाद में बात करो। हम कमजोर है, खुलिकल इंसान उदयफा,
तो हम लोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह कमजोर नहीं है। उसका नाम अल कवी, वो ताकतवर है, अल जब्बार, मनवा के रहता है। उसकी जात इतनी बड़ी है कि सारे लोग भी इस तरह के गलत काम कर दें तो उसको नहीं लाएगा।